देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते,
सभी आज जिस विषय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, हम सबके ब्राह्मण जीवन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ साथ जिनकी हम सेवा करेंगे उन्हें भी इसी विषय की बहुत अधिक आवश्यकता है। वर्तमान समय विश्व की अथवा अपने देश की जिस प्रकार से गति चल रही है, हर क्षेत्र में अति होती जा रही है। इस अति के वायुमंडल में जहां पर प्रकृति के पांचों तत्व अपना प्रभाव डाल रहे हैं, विकारों का फुल फोर्स है, आत्माएं उनके प्रभाव में आकर फुल देह विमान के कारण अपने चिंतन को दूषित बना चुकी हैं, उनका सोचना बोलना करना हर प्रकार से नेगेटिविटी की ओर बढ़ता जा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप विकास के कार्यों में बहुत बड़ा अवरोध आ रहा है। सबसे पहले हमें उनकी चिंतन धारा को बदलना होगा। जब तक सोच विचार की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं, तब तक कितने भी विकास के कार्य कर लिए जाएं संभव नहीं है। इसलिए हम सभी इस विषय पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कुछ आध्यात्मिकता की ओर अधिक ध्यान देने का है। सरकार की योजनाएं, एनजीओ के सहयोग, अनेक प्रकार के कार्य हमारे देश में अनेक गणमान्य लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके करते हुए भी जिस चीज की कमी है उसे पूर्ति करना, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम सभी सुन रहे हैं बार बार कि हमारा मेन थीम है आध्यात्मिकता, मुख्य जो हमारा विषय है जिस पर हम सभी चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और लोगों का ध्यान खिंचवाना चाहते हैं, वो आध्यात्मिकता की ओर है। और आध्यात्मिकता का अर्थ हम बताते हैं स्वयं को जानना, स्वयं के पिता के साथ संबंध स्थापित करना। अब स्वयं में हम सबको बहुत अच्छी तरह से संदेश देते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप इस सृष्टि मंच पर किस लिए आए हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी बहनें यही ज्ञान देने के लिए हर स्थान पर प्रयास करती हैं, सेवाएं करती हैं, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से किसानों को हम कर्मों की खेती का ज्ञान देते हैं और खेती के लिए बीज का महत्व बताते हैं, खाद, बीज और धरती, जिसके विषय में हम बहुत डिटेल में सुन चुके हैं, लेकिन वो बीज जिससे श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हो, परमात्मा पिता ने उसे ही चेंज किया है। और हम सब जानते हैं कि आत्मा की मूल शक्ति, जिसे लोग नहीं पहचान सके हैं, मन है। और मन के अंदर जिस प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, वैसा ही उसका जीवन बनता है। तो आज हम सब भी संकल्प लेंगे और साथ साथ जिनकी हम सभी सेवा करेंगे, उन्हें भी ये संकल्प देंगे कि किन विचारों में सवेरे से रात तक हम सबको रमण करना है, किन विचारों के आधार से हमारा श्रेष्ठ जीवन बन सकता है, हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे गांव का विकास हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो आज का ये विषय है सकारात्मक चिंतन की कला। मैं समझता हूँ सामने आप स्लाइड्स भी देखते जाएंगे, कुछ स्पष्टीकरण हम आपको देंगे। एक बहुत अच्छा एक माध्यम है ये भी कि अगर हम ऐसे प्रवचन करते हैं तो सबका ध्यान कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैंने भी ये बात नोट की है, जब कोई उन्हें चीज दिखाई जाती है सामने, तो सब एकाग्रचित होकर के देखते और सुनते हैं। ये भी अभ्यास की जरूरत है और ये प्रथम अभ्यास मैं आज यहाँ करने जा रहा हूँ। तो आपके सामने सकारात्मक चिंतन की कला, क्या कला है? तो सबसे पहले विचार प्रक्रिया, विचार कैसे कैसे चलते हैं, मनुष्य आत्माएं क्या क्या सोचती हैं, किस किस प्रकार की श्रेणियां हैं विचारों की, यहाँ पर चार भागों में उन्हें बांटा गया है। सवेरे से रात तक इन्हीं चार विचारों के चक्र में हम सब का दिन बीतता है। कुछ एक आवश्यक विचार हैं, बहुत जरूरी हैं, करने भी पड़ते हैं और करने भी चाहिए। किस आधार से? कुछ जिम्मेवारियां व्यक्ति की होती हैं, जैसे किसी को कोई सेवाएं मिली हैं, कोई ड्यूटी मिली हुई है, उसके आधार से विचार चलते हैं। कुछ सूचनाओं के आधार पर हमारे विचार चलते हैं, आवश्यक सूचनाएं समय पर समय जो मिलती हैं, जैसे बाबा भी हम बच्चों को सूचनाएं दे रहा है समय की, और समय की सूचना के आधार से हम सबके विचारों को चेंज कर रहा है कि बच्चे अभी समय बहुत कम है, इसलिए इधर उधर के विचारों में अपना इस अमूल्य समय को नष्ट नहीं करो। ये सूचना है समय की। इसी प्रकार हर क्षेत्र में कुछ सूचनाएं समय पर समय हमें प्राप्त होती रहती हैं, जो जरूरी हैं और करना भी पड़ता है। और कुछ एक अनुभव के आधार पर हमारे विचार चलते हैं, जो हम कर लेते हैं या हम सुन लेते हैं, करने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद प्रैक्टिकल जीवन में कुछ अनुभूतियां हो जाती हैं और उस अनुभव के आधार से हमारे विचार चलने लगते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ये आवश्यक विचार हैं, जो अनुभव के आधार से, आवश्यक सूचनाओं के आधार से और जिम्मेवारियों के आधार पर चलते रहते हैं। दूसरे विचार हैं जिनको हम व्यर्थ की श्रेणी में ले आते हैं। आप हम सब जानते हैं, बाबा की सभी मुरलियां आज तक आप सभी स्टडी करें, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्रेरित की गई हैं। लेकिन व्यर्थ विचार कहते किसको हैं, कई बार इसकी परिभाषा भी हम स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसको तीन बातों में यहाँ पर भी बांटा गया है। एक है कि जो बीत गई बातें, जिसको पास्ट इज पास्ट बाबा हमेशा कहते हैं, बीती को बिंदी लगा दो। कई कर्म हम सबने पूर्व में ऐसे किए अज्ञान के वश, या मनुष्य आत्माएं भी कुछ ऐसे कर्म कर लेती हैं जिनका बार बार चिंतन चलता रहता है, न चाहते भी वो विचार चलते हैं और उनसे वो युद्ध करता है, उन्हें समाप्त करना चाहता है। कहता है क्या करूं, मैं चाहता हूं ये विचार ना आए लेकिन आ जाता है। उस विचार को व्यर्थ विचार की श्रेणी में हम सब ला सकते हैं, उसको हमें स्टॉप लगाना है। और स्टॉप लगाने की शक्ति कैसे आएगी वो आगे हम आपको बताएंगे। भविष्य दूसरा है वर्तमान का भय। वर्तमान में कई बार कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में घटती हैं या हम दूसरों की देखते हैं जिससे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। और भयभीत जीवन जिसके विचार ऐसे चलते हैं, इसके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ भी न हो जाए, इसके पास ये बीमारी आ गई है मेरे पास भी ना आ जाए, ये नहीं चल सका मैं भी न चल सकूं, अंदर से भय रहता है, इसको भी बाबा हमेशा कहते हैं ये भय। वर्तमान में भय से जीना ये भी व्यर्थ विचारों की श्रेणी में आता है। और एक बहुत बड़ी बात जो भविष्य की चिंताएं लेकर के हम सभी चलते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, कल की चिंता, उसका भी भय है। अथवा कल के कारण कई चीजें जो हम नहीं चाहते वो भी करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और चिंतित रहते हैं। तो वर्तमान के का भय, भूतकाल की पास्ट की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं, ये सब क्या है, ये व्यर्थ विचार की श्रेणी में आता है। हम सभी नकारात्मक विचारों की प्रक्रिया को भी जानते हैं और इसका बहुत बड़ा विस्तार है, यहाँ पर तीन चार बातें बताई गई हैं, लेकिन कईयों के दृष्टिकोण में देखने का नजरिया ही नेगेटिव होता है। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बात करता है, ऐसे क्यों चलता है, इसने इसके साथ ऐसा क्या कहा, बहुत कुछ हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। और ये बात हम सब ध्यान दें कि नेगेटिव सोचने देखने का परिणाम ही गलत कर्म हो रहे हैं। जितनी आत्माएं गलत कार्य के वशीभूत हो रही हैं, वो हर चीज को इसी दृष्टिकोण से देखती हैं कि इसने ऐसा किया मैंने किया तो क्या हुआ, तो वो है अशुभ, अशुद्ध और भ्रष्ट, विकारी जिसको हम कहें। अशुभ जो अकल्याण का, किसी के पतन का सोचना, अपने साथ साथ दूसरों को कंपेयर करके और उसके प्रति हमेशा उसको आगे बढ़ने से रोकना, जिसकी कहानियां आप हम सब सुनते हैं। हमारे यहाँ जब मैनेजमेंट कोर्स होते हैं तो एक केकड़े की कहानी सुनाई जाती है, आप सभी टीचर्स बहने जानती होंगी, और हमारे राजेश भाई भी बहुत अच्छी तरह से केकड़ों की कहानियां सुनाते हैं, इसलिए मैं उसको अभी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय मैं लेके यहाँ बैठा हूँ। और उसके कारण वो अशुद्ध विचार, अशुभ विचार जो मनुष्य आत्माओं का पतन करते हैं, और विकारी भ्रष्ट विचार जिसके अंदर आज हमारे बहन और भाइयों में भी कोई भी प्रकार के संबंधों में विकारी भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। देखते ही जो एक संबंध के स्नेह की भावनाएं थी वो विकारी भावनाओं में परिवर्तित हो गई हैं, उसको भी नेगेटिव विचारों में लिया गया है। और चौथा जिसके विषय में हम सब सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, वो सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विचार शुद्ध हैं, शुभ हैं, दूसरों के और अपने कल्याण के हैं और वो श्रेष्ठ हैं, जिसमें हम आत्माओं की प्रगति समाई हुई है। तो ये विचार प्रक्रिया आवश्यक, व्यर्थ, नकारात्मक, सकारात्मक, और इसके साथ साथ कुछ उच्च श्रेणी के विचार हैं, योगियों के विचार हैं जो बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त शून्य के रूप में कम विचारों में अधिक सफलता प्राप्त होती है। अब विचार प्रक्रिया क्या है और वो कैसे विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा जाता है जैसा बोगे वैसा पाओगे। बोगे क्या, बीज बोगे, तो जैसा बीज बोएंगे वैसा फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर विचार रूपी बीज का परिणाम दिखाया गया है कि जिस प्रकार का आत्मा चिंतन करती है, विचार करती है, वैसे उसके मुख से कभी न कभी बोल जरूर निकलते हैं, और जब बोल निकलते हैं तो हो सकता है एक दिन वो कर्म में भी परिवर्तित हो जाएं। इसलिए विचार को हमें चेक करना होगा कि किस प्रकार के हम विचार कर रहे हैं। तो विचार रूपी बीज से बोल, कर्म और कर्म करने के बाद हमारी भावनाएं बनती हैं। भावनाएं उस प्रकार की बन जाती हैं कि व्यक्ति ऐसा है, इसने ऐसा मेरे साथ किया या ऐसा करता है। और इन्हीं तीन बातों के आधार से हमारी आदतें और व्यक्तित्व बनता है। आप हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यक्ति की आदतें होती हैं उसका उस प्रकार से शरीर बनता है। एक बहुत गहरा विषय है, इस पर आप सभी बात विचार करना कि आज जो ऐसे शरीर बने हैं जो क्रूप हैं, जो किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं से विकलांग हैं, उन सब का भी कारण विचार हैं। तो व्यक्तित्व अथवा आदतों के आधार पर शरीर का निर्माण होता है, और उसी आधार से हमारे संबंधों में मधुरता अथवा कटुता आती है, संबंधों में स्नेह बढ़ते हैं, आपसी संबंध या तो बहुत नजदीक के बन जाते हैं या उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं, और उन्हीं आदतों के आधार से ही वायुमंडल का निर्माण बनता है होता है। जिस स्थान के वायुमंडल पर आप नजर दौड़ाएं, आप देखेंगे कि वायुमंडल कहीं का बहुत बहुत शुद्ध और पवित्र होता है, खिंचाव होता है। आप उस स्थान को जानते हो या न जानते हो, एक बार की बात मैं आपको बताता हूं, मैं अचानक दिल्ली के एक मार्केट में गया, मैं अपने अनुभव की बात आपके आगे रखता हूं। और मैं ऐसा, हमने कहा चलो, दो भाई थे, हम कहा पैदल ही चलते हैं, पांडव भवन आ रहे थे और मार्केट घूमते घूमते हमने कहा हम पैदल चलते हैं। और पैदल चलते चलते हमने एक ऐसी गली पकड़ ली, हमने कहा चलो कहीं ना कहीं रास्ता तो निकल ही आएगा। और उस गली में जब मैं गया तो वहां पर इतना वायुमंडल भारी था, भयभीत था, कोई ने मुझे कहा नहीं यहाँ क्या होता है, लेकिन मुझे पता चल गया यहाँ कोई कसाई खाना है शायद। वायुमंडल में ही इतना भय था, इतनी गंध थी, इतनी दुर्गंध थी, जो देख करके ही नहीं लेकिन अंदर उस वायुमंडल से क्रॉस करते ही हमारे विचारों में एक भय का वायुमंडल बन गया कि पता नहीं किस गली में हम आ गए हैं। वायुमंडल कहां से बना? जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं, जिस प्रकार का वो कर्म कर रहे हैं, जैसी उनकी आदतें बनी हुई हैं, उस आदतों के आधार से स्थान का वायुमंडल बन जाता है। आज मधुबन का वायुमंडल आकर्षित करता है, शांतिवन में लोग आते हैं, स्वर्ग के वायुमंडल की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा वायुमंडल है, बहुत शांति है, बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। कारण व्यक्ति के व्यवहार आदतों के आधार से वायुमंडल बना है। तो जिस स्थान पर आप सेवाएं दे रहे हैं, अगर आपके सकारात्मक विचार हैं और व्यक्तियों के अंदर आपने आदत डाल दी कि आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, उनकी आदतें अगर अच्छी बन जाएंगी तो वहां के वायुमंडल में आप कुछ दिन के अंदर अवश्य परिवर्तन पाएंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। लेकिन ये मन है क्या? कहते हैं मन, जिसके विषय में शास्त्रों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, बार बार गीता में भी भगवान को अर्जुन यही कंप्लेन करता है कि मन नहीं मानता है, मन नहीं रुकता है, मन कंट्रोल में नहीं आता, बहुत कंप्लेन है। योगी बच्चों को तो बाबा अभी यही शिक्षा दे रहे हैं कि मन को एकाग्र करो, मन को कंट्रोल करो। मन एक बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र है, और ये ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है, जिस ऊर्जा के केंद्र से आप बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छे विचार आप कहीं पर भी पहुंचाना चाहते हैं तो मन को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। जिसका मन जितना शक्तिशाली है उतनी बड़ी वो सेवाएं कर सकता है। मनोबल की बात है, मन की शक्तियों को हम बढ़ाएं तो मन विश्व का सबसे महान परंतु सबसे कम जाना गया ऊर्जा का संसाधन है। जब हम इस ऊर्जा को समझेंगे और उसे सही दिशा देंगे तब हम अपने जीवन के मालिक बन जाएंगे। हम सभी को बता सकते हैं और बताते भी हैं कि आज जितने भी हिंसा, बलात्कार, अपराध, अपराधीकरण हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? मन की गुलामी। और मन न मानने के कारण, मन कंट्रोल में न होने के कारण कर्मेंद्रियों में उग्रता आ गई है और उस उग्रता के कारण ही व्यक्ति न चाहते हुए भी कुकर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है। इसलिए मन को कंट्रोल करना, मन को अपने वश में रखना, ये सही दिशा देनी पड़ेगी, इसको सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा, जिससे मन और कर्मेंद्रियां जिनका आपस में बहुत समीप का रिश्ता है उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो याद रखें, जैसे विचार वैसा जीवन। जिस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता है, अगर आप महान आत्माएं, देव आत्माएं हमें बाबा बनाना चाहता है, तो उसके लिए हम सभी क्या कर रहे हैं, हम वैसे विचार करते हैं। अगर कोई विचारों को परिवर्तन नहीं करता तो वो उस सोमान में भी नहीं रह सकता कि मैं क्या बनने वाला हूँ। तो हम सबको विचार प्रक्रिया का ज्ञान दें कि हम किस प्रकार के विचार करें तो हमारा श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। तो मैं और मेरे विचार, विचारों एवं संकल्पों की परिवर्तनशीलता, जरा इस पर आप विचार करें, क्योंकि हम सभी तीन बातों का ज्ञान आत्मा की जब लेसन पढ़ाते हैं प्रथम लेसन, तो तीन बातों पर हम विशेष फोकस करते हैं कि आत्मा मन बुद्धि और संस्कारों से, इन तीन सूक्ष्म शक्तियों का केंद्र बिंदु आत्मा है। मन क्या है, जिसके अंदर विचार हैं, गति है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और उसके ऊपर प्रभाव है अर्धचेतन, कुछ न कुछ जो हमने किए हैं उसका प्रतिफल है। और बुद्धि, जिसको हम कहते हैं निर्णय शक्ति, जिस निर्णय की शक्ति के आधार से कुछ बातें हम फौरन स्वीकार कर लेते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कुछ बातें हम नकार देते हैं कि नहीं करना है, बस नकारने और स्वीकारने की शक्ति किसमें, बुद्धि के अंदर है, निर्णय शक्ति के अंदर है। और वो जब नकार देती है अथवा स्वीकार कर लेती है तो उसी अनुसार उसके कर्म चलते हैं, और कर्म करने के बाद उसके संस्कार बनते, उसका व्यक्तित्व बनता है, और उसी व्यक्तित्व के आधार से चेतना पर प्रभाव पड़ता है। किस तरह से हमारे विचारों का निर्माण होता है, मन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर भी हम सभी ध्यान दें। मन पर बाह्य प्रभाव, विचारों पर जो विचार हमारे चलते हैं उसके क्या कारण हैं, किस तरह से चलते हैं, तो सबसे पहले जो पिछले जन्म के संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार, उनके आधार से इस समय के संकल्प, इस समय की विचारधाराएं हैं, इस जीवन की बीती हुई बातें, जिस प्रकार शरीर है, मान लो किसी का शरीर कुछ कष्टदायक है, कुछ रोग है, कोई बीमारी है, उस आधार से भी विचार बार बार चलते हैं, कहते हैं क्या करूं, चाहता नहीं हूं विचार चले। आज भी बाबा ने कर्मातीत स्थिति की निशानी बता दी कि कर्मातीत आत्माएं इस बंधन से मुक्त होंगी, भले शरीर बीमार हो लेकिन बीमारी का प्रभाव नहीं आएगा, उसके विचार ऐसे नहीं चलेंगे। लेकिन जब तक विचारों में इतनी एकाग्रता नहीं है, तब तक शरीर जैसा है वैसे उसके विचार चलने लगते हैं, और जिन व्यक्तियों के संग में उठता और बैठता है, जैसी संगत करता है, व्यक्तियों के साथ बैठता रहता है, इसलिए उसके भी विचारों का हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। वैभवों का, जिन वैभवों के बीच में हम पल रहे हैं, जिस प्रकार की हमें सुख सुविधाएं साधन हमें प्राप्त हैं, उस आधार से भी हमारे विचार प्रभावित होते हैं। और जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, जो परिस्थितियां, जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हो रही हैं, उनके आधार से विचार चलते हैं। जैसे आज सुनामी आया या कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां घटी, तो लोग जो वहां रहने वाले हैं उस प्रकार के विचार उनके अंदर उत्पन्न होने लगे, भयभीत रहने लगे। जो सागर को अपना अन्नदाता या उनको अपना जीवनदाता मानते थे, देवता के रूप में पूजते थे, आज उस सागर को किस नजर से देखने लगे, कहते ये राक्षस है, ये सुनामी नहीं है, कुनामी आ गया। तो ऐसी ऐसी बातें, उस आधार से उसके विचार चलने लगे। तो परिस्थितियों का प्रभाव भी हमारे विचारों पर पड़ता है। अभी आपको नकारात्मक विचारों का चक्र सुनाना चाहता हूं, यहाँ पर एक मिसाल दिया गया है बच्चों के स्कूल का मिसाल है, लेकिन ये मिसाल हम जिस प्रकार के गांव में जाते हैं उस प्रकार का मिसाल दे करके इस पर हम बता सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स में जब यहाँ पर ग्राम विकास के और गांव के लोग आते हैं, दूध डेयरी से आते हैं, तो हम उन्हें एक मिसाल देते हैं जो यहाँ नहीं है, और वो मिसाल देते हैं कि आजकल एक विद्या चली है जिसको कहते हैं भूत विद्या। भूत विद्या बहुत है और लोगों का एक इतना गहरा विश्वास उसमें बैठता जा रहा है, जो कहेंगे यहाँ पर इस पेड़ पर इस स्थान पर भूत रहता है, इस खंडहर में भूत रहता है, और ऐसा नकारात्मक विचार व्यक्ति के अंदर भर देते हैं। मान लो आपको कोई बता दे कि इस स्थान पर भूत है, आप क्या करेंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, अगर जाना होगा तो क्या करेंगे, लेकिन अगर आपके विचारों में वो बात डाल दी गई, किसी ने आपको कह दिया, तो जब भी उस स्थान से क्रॉस करेंगे आपके मन के अंदर वो दृश्य आएगा। तो इस प्रकार ये हम विचार प्रक्रिया, नेगेटिव विचार प्रक्रिया की परिणाम बता रहा हूँ फेल होने की, फिर बताऊंगा भूत की। मान लो आज किसी बच्चे की मन में डाल दिया जाए तू पढ़ता नहीं है, तुम फेल हो जाएगा, परीक्षा क्या देगा, तुम पढ़ाई नहीं किया है, तुम तो बहुत टाइम वेस्ट किया है। माँ बाप उसको पेपर देने के समय वो पेपर देने जा रहा है और इस प्रकार के मन में उसके विचार डाल दें तो उसका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं क्या क्या चलेगा मन में। तो सबसे पहले उसके आगे दृश्य आएंगे फेल होने के, और दृश्य के साथ साथ फेल होने का वो दृश्य देखेगा, फिर उसको पिछली बार पिछले जीवन में या पिछले पेपर्स में जो असफलताएं प्राप्त हुई होंगी, जितनी बार वो फेल हुआ होगा तो बार बार सोचेगा ऐसे में फेल हो गया था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके अंदर वो दृश्य के साथ साथ स्मृतियां बनेंगी, और स्मृतियों के कारण जब वो पेपर हाल के अंदर पहुंचेगा और उसके हाथ में पेपर थमाया जाएगा तो क्या होगा, पढ़ने की बजाय पेपर का उत्तर सोचने की बजाय उसके हाथ पर कांपने लगेंगे और वो भयभीत हो जाएगा, फिर भयभीत होकर वो पेपर दे देगा, भय तो अंदर भरा हुआ है और वो फिर उत्तर दे रहा तो कैसा उत्तर होगा, आप साफ जान सकते हैं कि परिणाम क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। और फेल होने के बाद फिर प्रतिक्रिया क्या होगी, फिर जब पेपर उसके हाथ में आएगा तो वही संकल्प उसके चलना शुरू हो जाएंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा। इसलिए हर एक को ये ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जब कोई कार्य अच्छा करने कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो इस प्रकार के संकल्प करे कि मैं इसमें अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा। अब सकारात्मक विचार की प्रतिक्रिया, आप विचार चक्र देखें, क्या है सकारात्मक विचार चक्र, आप सबको बाबा की मुरलियां याद होंगी, हम ध्यान खिंचवाते हैं, हमारे टीचर्स और सब बीके भाई बहने बैठे हैं, इसलिए पहला जब ग्रुप भारत से विदेश सेवा पर गया था, बाबा के सामने जब वो ग्रुप मिलने आया तो बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही थी, क्या आप जिस स्थान पर जा रहे हो उस स्थान की सेवाएं की है? तो ये लोग सब मूंझ गए, बाबा क्या कहना चाहते हैं, जिस स्थान पर आप जा रहे हो उस स्थान की सेवा की है? आप सभी ध्यान देना, आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं सेवा करने के लिए, जाने के पहले आपको अपने स्थान से उस स्थान पर जाकर वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है, अच्छे विचार लेकर के, सकारात्मक विचार लेकर के। ऐसा नहीं सोचना कि वो व्यक्ति ही ऐसा है, वो कभी भी मानेगा नहीं, वो तो है ही ऐसा, नकारात्मक विचार नहीं, जरूर मानेगा, जरूर कार्य करेगा, क्यों नहीं करेगा, अच्छे संकल्प से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो सकारात्मक विचार चक्र, वो अगर बच्चा ये संकल्प ले जाता है कि मैं जरूर पास हो जाऊंगा कुछ भी हो जाए, उसके दृश्य वो देखता है, खुशी के दृश्य उसके मन में आते हैं, उसको पिछली सफलताएं जितनी भी प्राप्त हुई हैं मन के अंदर उभरती हैं कि हमने बार बार ऐसे पेपर दिए हैं, कुछ भी हो हम तो पास हो करके दिखाएंगे, उसका मनोबल इतना अंदर से ताकतवर है, आत्मविश्वास जागृत है, जिसके कारण वो पेपर हाथ में लेता है और निर्भय होकर के जो अच्छे अच्छे प्रश्न है, सहज प्रश्न है, उनका उत्तर देता है, और उसके आत्मविश्वास के फल स्वरूप पास हो जाता है, क्रिया में पास हो गया, फिर प्रतिक्रिया उसको उसी प्रकार के संकल्प चलते हैं। इसलिए हरेक माँ बाप को, हरेक को ये ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि आप कोई भी अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के मन में पहले से भ्रांति नहीं भरो, पहले से उसके मन को नेगेटिव नहीं बनाओ, उसको अच्छे विचार दो, जरूर पास होगे, जरूर सफलता मिलेगी, सफलता आपका जन्म से अधिकार है और अच्छे कार्य में भगवान आपको साथ देगा, मदद करेगा, हिम्मत आप रखो, भगवान की मदद मिलेगी। इस प्रकार से उसको सकारात्मक चिंतन दे करके उसकी चिंतन धारा को हम बदल सकते हैं। अब विचार शक्ति क्या है अपने प्रति, इसमें हम तीन बातें लेंगे। स्वयं के प्रति हम क्या क्या नकारात्मक सोचते हैं, क्या क्या सकारात्मक सोच सकते हैं, दूसरों के प्रति हम क्या क्या नकारात्मक सोचते हैं और क्या क्या सकारात्मक सोचा जा सकता है, विश्व के प्रति भी हम बताएंगे आपको क्या हम नकारात्मक सोचते हैं और क्या सोचना चाहिए। ये विचार शक्ति है विनाशकारी या उपचारकारी। नकारात्मक विचार है स्वयं के प्रति, क्या है, ये कार्य मैं ठीक ढंग से नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूं, जहां नहीं आ गया आप समझ लो ये नकारात्मक विचार है, मैं ये कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकूंगा, मैं जो करता हूं दूसरों को पसंद नहीं आता है क्योंकि वे मुझे चाहते नहीं है, मैं जो करता हूं वो दूसरों को पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे चाहते नहीं है, मैं खुद को बदल नहीं सकता, ये स्वयं के प्रति नकारात्मक विचार है। अब सकारात्मक इसके दृष्टिकोण में देख लीजिए, मैं अपनी क्षमता अनुसार ये कार्य करूंगा और जो अनुभव से बढ़ती जाएगी, मैं हरेक को हर समय संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए किसी को नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित, किसी के नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं हूंगा, मुझ में परिवर्तन करने की शक्ति और मैं आवश्यकता अनुसार स्वयं को बदलने के लिए तैयार हूं। बाबा हमेशा कहता कुछ भी हो जाए, दूसरा बदले या न बदले, मैं अपने आप को बदल सकता हूं, कुछ भी होगा मैं खुद को बदल लूंगा, इसलिए कहीं टकराव नहीं होगा। तो स्वयं के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक विचार क्या हैं, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ है, लेकिन आप इसका बहुत डिटेल उनको बता सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि हम स्वयं के प्रति कौन कौन से अच्छे विचार करें। अब अन्य के प्रति आप देख लें क्या क्या हम सोचते हैं और क्या सोचना है। कई बार सोचते हैं वे इस कार्य को ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरों के प्रति हमारी अपेक्षाएं होती हैं ये ठीक करे, और उनके प्रति सोचते हैं क्यों नहीं ठीक करते, करना चाहिए इनको। लेकिन अगर इसकी जगह पर सकारात्मक विचार सोचे जाएं, प्रत्येक व्यक्ति का किसी कार्य को करने का अपना तरीका है, अपना तरीका, अपने ढंग से अच्छा कर रहा है। दूसरा है, मुझे उस व्यक्ति के बात करने का तरीका पसंद नहीं है, उसी स्थान पर यदि उन्हें मुझे सहयोग देने में कठिनाई अनुभव हो रही है तो मैं उन्हें सहयोग देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जो कहते हैं कि वे कभी भी विचारों से सहमत नहीं होते, इसलिए मैं उनकी चिंता नहीं करूंगा। ये नेगेटिव विचार आता है ना, मैं उसकी चिंता नहीं करता, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं, कभी भी सहमत होने वाला नहीं मेरे विचारों से। उसकी जगह पर कि मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको सहयोग दूंगा, उसकी जगह पर ये एक विचार सकारात्मक विचार है। अब विश्व के प्रति, दुनिया में बहुत अव्यवस्था है, दुनिया बहुत बिगड़ गई है, नकारात्मक विचार, इस देश का हाल बहुत बुरा है, इसलिए कभी कुछ करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे आजकल कह देते हैं, अरे कितना भी विकास करो कुछ होने वाला नहीं है, आप क्या क्या करोगे गांव में जाकर के, कुछ नहीं फायदा होने वाला, ये क्या है, दूसरों के प्रति हैं, दूध की जगह पर पानी डाल रहे हैं। तो ये विचार जो हम विश्व के प्रति करते हैं कि दुनिया में बहुत अव्यवस्था हो गई है, ये हो गया है, ये तो कभी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन बाबा ने हम सबको इसके स्थान पर क्या सिखाया है, ये तो दुनिया का राष्ट्रीय एवं पर्यावरण से संबंधित लंबे इतिहास का एक जटिल परिणाम है। ये जो हो रहा है इसकी जगह पर हम सोचें इसका परिणाम ये हो क्यों रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, चाहे व्यक्तियों के द्वारा आ रही हैं, कारण क्या है, ये बहुत बड़ा कर्मों का परिणाम है जिसकी उपभोगना है, जिसको हम सभी सहज स्वीकार करें, हमारे ही कर्मों का ये प्रतिफल है। और इस देश की स्थिति हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्थिति का प्रतिबिंब है। चाहे हमारा व्यक्तित्व जीवन जैसा रहा है उसका ये प्रतिफल है, या जिस प्रकार का ये समूह बना है, संगठन है, व्यक्तियां हैं, उनका ये परिणाम है। हर परिस्थिति में मेरी अभिव्यक्ति दूसरों को प्रभावित अवश्य करती है, इसलिए मैं स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाऊंगा। अगर मैं बदलूंगा तो जग बदल जाएगा, इसलिए स्वयं को बदलने से विश्व परिवर्तन हमारा ये स्लोगन है। और हम हरेक को इसके लिए प्रेरित करें कि आप दूसरों की चिंता छोड़कर पहले खुद को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ, हर परिस्थिति के सकारात्मक पहलू को देखना। हर परिस्थिति के, हर घटना के, जो घटनाएं आपके आगे घट रही हैं, उसमें अच्छाई ढूंढ लो, कुछ न कुछ फायदा है, अनुभव तो बढ़ता है। एक बार की बात है, आपको बाबा की बात सुनाता हूँ, हंसी की बात भी है और बहुत गहरी बात है। किसी स्थान पर, किसी सेवा केंद्र पर अचानक आग की घटना घटी थी, आग लगी थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बाबा के बच्चों को शौक आ गया था कि बाबा के घर में भी ऐसा हो सकता है। बाबा को जब सुनाया गया, बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए। बाबा ने बोला, ये भी बहुत अच्छा हुआ, आपने बाबा के साकार के तो बहुत कड़े कड़े शब्द इस बातों में सुने हैं, अच्छा हुआ बच्चे। क्या अच्छा हुआ? बोला, अनुभव बढ़ा। क्यों लगी, कैसे लगी, बहुत कुछ सीख गए तुम। अच्छाई को बाबा ने स्वीकार किया। नुकसान हुआ, ठीक है, वो तो मिल जाएगा, जो गया है वो आ जाएगा, और बहुत आ गया उसके बाद। जितना जला था उसके भी अधिक भावना बस लोगों ने भरपूर कर दिया सेंटर को। लेकिन बाबा का कहने का भाव था कि आपने बहुत कुछ से सीखा, बहुत कुछ अनुभवी बन गए, इसलिए कुछ भी अगर होता है तो आप इतना परेशान नहीं हो जाएं कि ऐसा हो गया, ये नुकसान हो गया। लेकिन हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू, हमारा क्या भला है, हमारी उसकी क्या कल्याण होगा इसमें, उस पहलू को देखना। प्रत्येक घटना के पीछे कल्याण की बात सोचना। हरेक के अनुभव से कुछ न कुछ सीखना। गुण ग्राहक बनना, आशावादी बनना, और विपरीत प्रतिक्रियाओं से बचना। समाधान पर ध्यान देना। समाधान क्या है? समस्याएं तो विकराल आएंगी और परिस्थितियां बड़ी आएंगी, लेकिन उसका समाधान कैसे मैं ढूंढूं, यह है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका ये अर्थ है। सकारात्मक के परिणाम हम आप सब जानते हैं, जिसका चिंतन अच्छा है उसका परिणाम क्या होगा। और आजकल जो हमारे यहाँ पर कैड प्रोग्राम चल रहा है, आप सबने सुना होगा, बहुत सफल हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स ने रिसर्च करके एक परिणाम निकाला है कि बीमारियों की मूल जड़ है नकारात्मक चिंतन। हमने एक बार गुप्ता जी से पूछा था, ये व्यक्ति जो आया है कैड प्रोग्राम में, ये तो मोटा भी नहीं है, इसको कोई प्रकार का ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, इसको हार्ट की बीमारी क्यों हो गई? कई कारण हैं, बीमारी एक प्रकार से नहीं आती है, अनेक प्रकार, अनेक कारण होते हैं। यदि व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचता है, बार बार सोचता है, तो सबसे पहले उसकी ब्रेन की नसें ब्लॉक हो जाती है, ब्लड चलना बंद हो जाता है। बहुत नकारात्मक सोचा, बहुत चिंतन किया, नींद फिटा दी सोच सोच करके, भले उसको और कोई बीमारी हो न हो, लेकिन ब्रेन की नसें उसको दर्द कर ली, सिर में दर्द पड़ जाता है। और जब पहले ब्रेन ब्लॉक होता है तो उसके बाद हार्ट की और अन्य बीमारियां शुरू हो जाती है। नकारात्मकता का परिणाम हम देख रहे हैं कि विश्व के अंदर दिन प्रतिदिन नए नए रोगों का जन्म हो रहा है। लेकिन सकारात्मकता का परिणाम क्या है? अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो स्वयं सदा संतुष्ट और सुखी और मजबूत रहेंगे। अगर कोई प्रसन्न रहना चाहता है तो मैं हमेशा बार बार कहता हूं, खुश रहना चाहते हो तो स्वयं के प्रति अच्छा सोचना सीख लो, हर बात में भलाई सीख लो, अच्छे अच्छे विचार करो, सुखी रहोगे और स्थिति और शरीर आपका मजबूत रहेगा, मन आपका शांत रहेगा, आपके अंदर रचनात्मक अच्छे अच्छे विचार चलेंगे, और जो घटनाएं घटने वाली उसमें सतर्क रहेगा। शरीर निरोगी और रचनात्मक और संतुलित रहेगा। अच्छे विचारों का परिणाम है। संबंध में मधुरता आ जाएगी, एकता आ जाएगी, आप एक दूसरे के विश्वास को जीत लेंगे और विश्वास पात्र बनेंगे। समाज सकारात्मक चिंतन के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित होगा, न्याय संगत होगा, शांतिमय होगा और वायुमंडल स्वच्छ, शुद्ध और समरस बनता जाएगा। ये सकारात्मक चिंतन का परिणाम है, ये स्व स्थिति की रिजल्ट है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है, हम व्यक्तियों को अच्छी स्थिति में ले आते हैं तो ये परिणाम हमारे स्वयं के प्रति, मन का, शरीर, संबंध, समाज और वायुमंडल पर पड़ सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कुछ बिंदु, 11 बिंदु हैं। अब लिखेंगे सभी क्या? चलो आपको लिखा हुआ दे देंगे, आप साथ ज्यादा लिखने की मेहनत नहीं करो। 11 हैं इसलिए इतना लिख लिया, ठीक है। आगे जो 11 बिंदु हैं जी, वैसे मैं क्लास में नहीं बताता हूँ, मैं तो अपने ढंग से 4-5 बातें बताता हूँ। 11 किसको याद रहती हैं? स्वयं के, दूसरों के और हर परिस्थितियों के बारे में सकारात्मक सोच, बोल और भावना हो। आप अपना जीवन जैसा चाहें वैसा ही दृश्य सामने लाएं। जीवन में लक्ष्य रखें परंतु याद रहें कि वो आपको कुछ देने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए हों। मैं नहीं कर सकता ये सोचकर स्वयं को सीमाओं में न बांधें। स्वयं को अथवा दूसरों को दुख से बचाने के लिए व्यर्थ बातों पर ध्यान दें, ध्यान न दें। अपने मन और बुद्धि को अनुशासित करें, ध्यान रखें कि उसमें जो समाएंगे वही आपको प्राप्त होगा। समस्याओं को सीखने का एक मौका दें, मौका समझें, सीखने का एक मौका। कोई परीक्षा आ गई, कोई घटना घट गई, ये सीखने के लिए आई है, कुछ न कुछ सिखा के अनुभवी बना करके जाएगी। समस्याओं को एक एक करके सुलझाओ, ऐसे नहीं सब समस्याओं को एक साथ सुलझाने लगो, तब तनाव से मुक्त रह सकेंगे। स्वयं के लिए विकल्प के रूप में नहीं बल्कि आवश्यकता के रूप से समय निकालें। स्वयं के लिए हरेक को समय निकालने की जरूरत है। क्या होता है कि हम अधिकतर सेवाओं में इतना व्यस्त हो जाते हैं जो स्वयं का बैलेंस टूट जाता है, और स्वयं का बैलेंस न होने के कारण हमारे चिंतन जो श्रेष्ठ होने चाहिए वो नहीं होता है। मैं अपने जीवन का एक लक्ष्य आपको सुनाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने लिए कम से कम सवेरे का जो 4 से 8 का समय है देना चाहिए। सारा दिन आप कारोबार करो, कितनी भी सेवाएं करो, लेकिन सवेरे का अमृत वेला ये मेरे लिए है। आपके मोबाइल बंद हो, फोन बंद हो और इस समय कोई कारोबार नहीं, मैं अपनी स्व स्थिति को अच्छा बनाऊं, अच्छा चिंतन करूं, कुछ लिखूं, कुछ पढ़ूं, कुछ अच्छे विचार करूं। ये सकारात्मक चिंतन का बहुत अच्छा तरीका है। आप बैठे तो आवश्यकता के रूप में स्वयं के प्रति समय जरूर निकालें। अगर कोई आपके प्रति कोई अच्छा कार्य करता है तो एक भावना हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। वो कौन सी? कृतज्ञता की, थैंक्स देने की, उसको स्वीकार करने की। कई बार हम लोग आपस में किसी ने अच्छा कार्य किया, मान लो आज हमारे भाई ने मेहनत करके बना करके दिया हमको, तो हमारा फर्ज क्या है? ये नहीं हम कहेंगे तुमने ये गलत किया, ये गलती कर दी, ये मिस्टेक है, इतनी जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर तैयार किया है, तो थैंक्स तो देना चाहिए ना, कृतज्ञता माननी चाहिए। कोई भी कार्य अगर कोई समय पर सहयोग देता है, मदद करता है, साथ देता है, तो हमारी कृतज्ञता की भावना, उसको उपकार मानने की भावना जरूर हो। इसमें यही सोचे कि क्या मिला न कि क्या नहीं मिला, हमें क्या मिला, हमें क्या प्राप्तियां हुई, उसका चिंतन करके उसका कृतज्ञता अथवा उसका उपकार मानना, और प्रत्येक क्षण के महत्व को समझें और उसका सदुपयोग करें। हर समय के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करें। सकारात्मक चिंतन, कर्म, रहन सहन, व्यक्तित्व, एक के बाद दूसरे का संबंध है। जिस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार का कर्म, उसी प्रकार का रहन सहन और उसी प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण। आज जो प्राप्त करते हैं उससे कई गुना महत्व है कि आप उसे कैसे प्राप्त करते हैं और उससे क्या बनते हैं। संकल्प कराना है सबसे, क्या लिखना चाहते थे क्या? नकारात्मक बातों को त्यागें। आगे एक अच्छा चिंतन, हम सभी सभाओं के बीच में संकल्प ले सकते हैं। जैसे हम सभी कहते हैं ना, व्यसनों को छोड़ो, इसकी प्रतिज्ञा करो। कईयों के विचारों के अंदर हिम्मत होती है, कईयों से के अंदर नहीं होती है, लेकिन ये हिम्मत दिखा सकते हैं, सभी संकल्प ले सकते हैं कि हम नकारात्मक बातों का आज से त्याग करेंगे, सकारात्मक चिंतन को बढ़ाएंगे। कम से कम कुछ समय तो दें उसके लिए। आवश्यकताएं जो हैं उनको हम पूरी करेंगे, कार्यान्वित करेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे और व्यर्थ बातों को समाप्त करेंगे। हर एक को ये चार संकल्प करने की आवश्यकता है। सकारात्मक, अभी ये सूत्र हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए 12 नियम और सकारात्मक व्यवहार का अर्थ पढ़ के सुना देता हूं, नोट नहीं करो, लंबा है। स्वयं के, दूसरों के और परिस्थितियों के बारे में सकारात्मक सोच, बोल और भावना हो। आप अपना जीवन जैसा चाहता है वैसा ही दृश्य सामने लिए। रिपीट है वैसे, पहले जो 11 नियम बताए हैं उसी के आधार से बने हुए हैं, लेकिन सकारात्मक व्यवहार का अर्थ हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू को देखना। ये भी रिपीट है, ये रिपीट स्लाइड। ठीक है, आप सभी ने देख लिया। अभी मैं इस विषय को और सार रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। टाइम तो हो चुका है, लेकिन 5 मिनट में हम सभी को बाबा ने कुछ बातों के लिए फुल स्टॉप लगाने की बात कही है, नेवर के रूप में, कभी नहीं। ये बात आप सभी से संकल्प ले सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सी शक्तियां हमारी नष्ट होती हैं, अच्छा चिंतन हमारा व्यर्थ चला जाता है डिबेट करने से, आर्ग्यू करने से, बहस करने से। नेवर आर्ग्यू। मुझे किसी से किसी बात की आर्ग्यू नहीं करनी है। नहीं हो सकता है छोड़ दो, ठीक है। बहसबाजी करके अपना और दूसरों का समय खत्म करना, बाबा ने इसकी मना की है। ना हम बहस करें और उनको भी बताएं आप किसी से बहस नहीं करो, आपको अच्छा नहीं लगता आप छोड़ दो, आप नहीं मानना चाहते हो, नमस्कार। ज्यादा किसी के ऊपर दबाव डाल करके उनको मनाने का फोर्स दे करके बाबा कहता है इसकी जरूरत नहीं है। नेवर आर्ग्यू, नेवर कंपेयर, किसी से तुलना नहीं करो, किसी से भेंट नहीं करना। हमारे किसान भाई भी कई बार बहुत सारी भेंट करते हैं एक दूसरे से। सीखने की भावना अलग चीज है, लेकिन इसके पास ये है, इसके पास ऐसा है, मेरे पास भी हो, साधनों के विषय में, सुविधाओं के विषय में कंपेयर करके, भेंट करके अपने मन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। नेवर कंप्लेन। एक आदत बनी हुई है व्यक्तियों की किसी न किसी की कंप्लेन करने की, और वो कंप्लेन करने से व्यवहार मधुर नहीं रहते। आपने अगर किसी की एक बात किसी को सुनाई और उसके कान तक गई कि मेरे विषय में इसने ऐसा बोला है, तो आपकी 10 बातें उसको जरूर बताएगा। अगर उसको नहीं बता सकेगा तो दूसरों को बताएगा, क्योंकि एक बार आपने कही है इसलिए कभी भी किसी की मुझे कंप्लेन नहीं करनी है। नेवर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं है, फुल स्टॉप। हर बात में कल्याण है, हर चीज में कल्याण है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं। बाबा कहता फुल स्टॉप लगाओ। अगर प्रसन्न चित रहना है तो प्रश्न समाप्त करो, प्रश्नों की डिबेट में नहीं जाओ। और एक बात है, नेवर रिएक्ट। रिएक्ट फौरन, कोई बात कह दो ना अधैर्यता से जवाब, फौरन रिएक्ट होता है। अगर कोई को बात अच्छी नहीं लगी तो ऐसा नहीं सोच समझ के जो उत्तर दिया जाए, तुरंत जवाब, तुरंत करने की आदत, तुरंत बोल देने की आदत एक बहुत बड़ा टकराव का कारण बनती है। नकारात्मक चिंतन इसी से उत्पन्न हो जाते हैं। तो नेवर रिएक्ट, ये 5 बातें हम सबके ध्यान पर रहे, और 4 सूत्र जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं, ABCD, सबको सुना सकते हो आप प्यार से, तनाव मुक्त रहने के लिए 4 सूत्र बताते हैं। सकारात्मक चिंतन के लिए चार बातें ए बी सी डी कैप्सूल के रूप में देते हैं। ए क्या? अटेंशन। अच्छा। और अवॉइड, कुछ बातों को अवॉइड करना सीखें, बोझ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। कोई बातें होती हैं, कोई समस्याएं होती हैं, अवॉइड की जा सकती हैं। मेरे कोई सोचने की जरूरत नहीं बार बार उन पर विचार करने की, आती हैं चली जाती हैं, समय लेती हैं। जैसे बीमारियां आ गई, ऐसा नहीं सोचते रहो, आई है जाएगी, कोई बात भी आती है आज नहीं तो कल जाएगी, सदा नहीं बैठ जाने वाली है। अवॉइड करो, कुछ बातें अवॉइड करने की जरूरत है। और कुछ कार्य बी क्या करना, बाईपास आजकल बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, रास्ते भी बाईपास कर देते हैं, बना देते हैं, हार्ट की बाईपास सर्जरी कर देते हैं, इधर से ब्लड नहीं जाता तो इधर से जाएगा। आपके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत सी सेवाएं हैं, विश्वास रख करके दूसरों को दो, बाईपास करो। बाईपास नहीं करना आता है, खुद सब बोझ लेकर के बैठे हुए हैं, बहुत काम है। एक भाई हमारे पास मधुबन में, मैं क्या करूं, इतना काम है मेरा, 3 मास का पेंडिंग काम है। अब 3 मास का जिसके बाद पेंडिंग काम होगा उसका योग लगेगा। बाईपास करना नहीं आता, दूसरों को साथी बनाना नहीं आता, सहयोगी बनाना नहीं आता। सब बोझ क्यों उठा के घूम रहे हो, दो दूसरों को, विश्वास रखो करेगा। अगर आप निश्चिंत जीवन, योगी जीवन जीना चाहते हो तो सब बातों में आप ही नहीं पहुंचो, दूसरों को भी साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, विश्वास रखो, करते करते सीख जाएंगे। ऐसे नहीं सब सीख करके ऊपर आए, हम ही कहां से सीख के आए थे। बाईपास। और सी माना कुछ कैंसिल कर दो, जरूरी नहीं है काम हर एक करना ही है, कैंसिल, सी लगाओ कट, नहीं करना। डू करो, जरूर करो जो जरूरी है। ए बी सी डी, अवॉइड करो, बाईपास करो, कैंसिल करो, और जो जरूरी है वो कर लो। तो हम सभी अगर सकारात्मक चिंतन हमेशा अपना बनाना चाहते हैं तो इन 4 बातों के कैप्सूल रोज खाना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन